लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम। भक्ति गीत एवं चेतना जागरण कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अनुपा ज्योति किंडो के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आगमन काल जो यीशु ख्रिस्त के आगमन की तैयारी का काल है, हमें जागने के लिए प्रेरित करता है। जागते रहने का तात्पर्य आंखों को खुला रखने से नहीं, वरन अपने हृदय की स्वतंत्रता में सही दिशा में आगे बढ़ने से है। अर्थात यह अपने आप को उपहार स्वरूप देने की चाह रखना और सेवा करना है। जीवन को सफल और सुखद बनाने की तलाश सभी को होती है। दैनिक जीवन की व्यस्तता एवं दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की होड़ में बहुधा धर्म, विश्वास और पड़ोसी पीछे रह जाते हैं। इनके प्रति कर्तव्य हमें महत्वहीन लगते और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर से संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ अपनी चिंता कर और अपने ही तक सीमित रहकर हम सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में युद्ध और जलवायु परिवर्तन मनुष्यों की उदासीनता और स्वार्थ के ही परिणाम है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि जागते रहने का अर्थ हमारे लिए ठोस रूप से अपने पड़ोसियों के प्रति सजग रहना है। अर्थात जो लोग कठिन परिस्थिति में हैं, उनकी जरूरत हमें चुनौती दे, जहां हम उनके द्वारा सहायता की मांग की प्रतीक्षा किए बिना उनकी सेवा करने हेतु आगे बढ़ें, जैसा कि ईश्वर हमारे साथ करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से जागने के द्वारा हम यीशु ख्रिस्त के आगमन की अच्छी तैयारी कर पाएंगे एवं उनके जन्म की खुशी, शांति, प्रेम और दिव्य आशीष से भर जाएंगे। तो साथियों, भेंट वार्ता के क्रम में आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपा ज्योति किंडो। वे हमें बतला रही हैं कि उन्होंने सेवा करने का रास्ता क्यों अपनाया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है डॉक्टर अनुपा ज्योति किंडो के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रहे हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा ज्योति किंडो है। मैं चेन्नई में रहती हूँ पिछले 25 साल से, लेकिन मेरा घर रांची में है और मैं वहाँ पे चेन्नई में एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में काम करती हूँ। मेरा काम विशेष है डायग्नोस्टिक लैब को मैं देखती हूँ और स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और पीएचडी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात, आपसे मुलाकात कर खुशी हुई। मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस पेशा को क्यों अपने लिए चुना।
मेरा हमेशा से ये मन था कि मैं लोगों की सेवा करूं, पर किस तरह से करूं मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुम डॉक्टर बनो, तो मुझे भी लगा कि मैं डॉक्टर बन के बहुतों की का हेल्प कर सकती हूँ और वैसा हो रहा है, जिसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को रिपोर्ट सही ढंग से दे पाती हूँ, सही समय पे दे पाती हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और पीएचडी स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर में पीएचडी किए वो अच्छे अच्छे जगह में अभी सेटल्ड हैं, कि मुझे खुशी है। और मुझे ये भी एक होप है कि मैं किसी दिन रांची में जा करके भी अपने लोगों के बीच में सेवा करूँ। शायद अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं वापस जाके अपने लोगों के बीच में उनकी सेवा करूँगी।
मेरा अगला सवाल होगा कि आप यूरोप में हैं, तो यहाँ आने का आपका उद्देश्य?
मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एकेडमिक में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो जिसके कारण से जब भी हमारा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होता है, हमारे मैं मेन फंगल इन्फेक्शंस पे काम करती हूँ, मेरा वो स्पेशलिटी है, तो मैं उस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करती हूँ और हमारा जो रिसर्च होता है वो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा हम उसको प्रेजेंट करते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, हमें दूसरे देश में जाके लोगों का कल्चर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मैं हर एक 2-3 साल में हर एक जगह जाती हूँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आप इस होली सिटी रोम में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक्चुअली मेरा दूसरा विजिट है रोम में। पहला विजिट में मैंने पूरा यहाँ का जो चर्च है, वेटिकन सिटी पूरा घूमा हुआ है, लेकिन मेरे मन में एक आशा था कि मैं वेटिकन रेडियो पिछली बार नहीं देख पाई थी, जिसके जो कि मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा थी, जो कि आज ये पूरा हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपके सामने इनके इंटरव्यू भी दे पा रही हूँ।
हमें भी खुशी है आपसे मुलाकात कर। अब मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप एक डॉक्टर हैं और अभी हमारे बीच में हैं, एसएन पापा के रेडियो से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपने धर्म और विश्वास में बने रहना चाहिए और अपना जो लक्ष्य है उसको विश्वास, परमेश्वर के विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा ना हो, वो जरूर पूरा होगा अगर आप अपने मन दिल से और परमेश्वर को साथ में याद करते हुए आगे बढ़ें और अपनी जो धार्मिकता है उससे ना हटें।
तो डॉक्टर अनुपमा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने सुंदर वचनों को हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक लौटता हुआ पंछी। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम व विश्वास में टिका रहता है, इसलिए यह जरूरी है कि वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को न सिर्फ समझें बल्कि उनका सम्मान भी करें। उचित सम्मान के अभाव में पति पत्नी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति नकारात्मक हो जाता है। जब पति पत्नी एक दूसरे पर शब्दों और कामों द्वारा वार करने लगते हैं और बीते झगड़ों को नहीं सुलझाते, तो वक्त के गुजरते वे एक दूसरे को अपने दिल की बातें बतलाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे शादी के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता जोड़ लेते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ये खतरे की घंटी है। कभी कभी पति पत्नी के करीबी दोस्त भी उनके वैवाहिक जीवन को बचाने और उनके बीच के रिश्ते को फिर से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंततः पति पत्नी के खुलेपन और परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे को समझने, माफ करने और स्वीकार करने पर निर्भर करता है। आशा है आज का नाटक टूटते परिवारों को बचाने में पति पत्नियों का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक लौटता हुआ पंछी।
क्या बात है शिवांगी, आज तो बहुत ड्रेस बदल बदल कर देखी जा रही है।
हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या ड्रेस पहनकर क्लिनिक जाऊं, कुछ पसंद नहीं आ रहा।
पसंद आएगा भी कैसे, तुम्हारी पसंद तो बदलती रहती है ना।
तुम कहना क्या चाहते हो संदेश?
वही जो तुम समझते हो भी समझना नहीं चाहती हो। तुम जो भी कुछ कर रही हो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता है। तुम कुंवारी नहीं, एक ब्याहता पत्नी हो। अच्छा होगा कि तुम राजीव से मिलना छोड़ दो।
अगर पत्नी को वह सब कुछ घर में नहीं मिलेगा जो वह चाहती है, तो फिर वह सब कुछ घर के बाहर ही ढूंढेगी ना।
तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बेशर्मी के साथ अपनी गलती को स्वीकारते हुए? राजीव तुमसे पूरे 10 साल छोटा है, और फिर शादी के बाद क्या यह सब तुम्हें शोभा देता है? क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, आजकल स्टाफ में तुम्हारे ही चर्चे चलते हैं कि डॉक्टर शिवांगी किस तरह से अपने पति को बेवकूफ बना रही है।
इंसान खुद बेवकूफ बनता है, उसे कोई बेवकूफ बनाता नहीं है। पहले अपना व्यवहार देख लो, फिर मुझे दोष देना।
क्यों, मेरे व्यवहार में क्या कमी है? मुझे अपनी क्लिनिक, नर्सिंग होम और मरीजों से जो समय मिलता है, क्या वो समय मैं तुम्हें देने की कोशिश नहीं करता? फिर तुम्हारे पास ही मेरे लिए कौन सा समय रहता है?
तुम एक सर्जन हो और मैं एक MD। तुम यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सर्जन ज्यादा बिजी रहता है या MD।
फिर मुझे समय ना देने का रोना क्यों रोती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर भी अपनी एक निजी जिंदगी होती है, उसकी, उसका घर, उसकी पति या पत्नी वो होते हैं?
यही सब कुछ मैं तुमसे भी कह सकती हूँ।
दूसरे पर दोष लगाकर अपनी गलतियाँ छिपाई नहीं जा सकती हैं। घावों पर कितनी भी पट्टियाँ बांध ली जाए, लेकिन सबको पता होता है कि पट्टी के नीचे घाव है।
तुम अपने तर्क अपने पास रखो, मैं क्लिनिक जा रही हूँ।
हेलो संदेश।
हेलो रंजना, क्या बात है, आज आपने अपना राउंड जल्दी खत्म कर लिया?
हाँ, रात को कोई इमरजेंसी नहीं थी इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ गई और इसलिए राउंड भी जल्दी खत्म कर लिया। आप सुनाओ, आप शायद राउंड लेने जा रहे हैं?
हाँ, बस अभी अभी आया हूँ।
अच्छा, शिवांगी कैसी है? आजकल तो न जाने कहाँ रहती है, उससे तो मिलना ही नहीं होता है।
ठीक है, अपनी जिंदगी जी रही है।
क्या बात है संदेश, आप पत्नी का जिक्र छिड़ते ही कुछ परेशान से हो गए?
अब आपसे क्या छिपा है, आपको तो सब पता है। आप उसे समझाती क्यों नहीं है? आपकी बात तो मानती और सुनती भी है।
वो जब भी मिलेगी मैं उसे जरूर समझाऊंगी संदेश, लेकिन आपसे भी मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा नहीं कि शिवांगी आजकल राजीव जैसे लड़के से क्यों बंधी हुई है?
मैं इस बारे में कभी सोचा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी ही गलती होगी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है।
डॉक्टर संदेश, आपकी ही गलती है। एक औरत और डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आपके प्यार में कहीं कोई कमी है, और अगर आपके प्यार में कोई कमी नहीं है तो फिर आपके अधिकार में जरूर कोई कमी होगी। अपने पति होने का अधिकार जताइए आप, या तो समस्या का हल निकल आएगा या फिर बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि शिवांगी को आपके साथ रहना है या राजीव जैसे लड़के के साथ।
मैं ऐसा कर तो सकता हूँ रंजना, लेकिन डरता हूँ कि कहीं घर की शांति भंग ना हो जाए।
और अभी क्या अभी आपके घर में, आपके मन में शांति है? क्या अभी घर और मन की शांति भंग नहीं हो रही है? आखिर इन हालातों में आप क्या,
कोई भी कब तक जी सकता है। फिर डॉक्टरी के पेशे में तो मानसिक शांति बहुत जरूरी है।
आपका कहना बिल्कुल सही है डॉक्टर रंजना।
तो फिर सोचना क्या संदेश? अब समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है। आप जख्म को नासूर बनने से पहले उसे शरीर से काट कर फेंक देते हैं ना, तो क्या अपनी जिंदगी के जख्म को आप नासूर बनने देंगे?
नहीं रंजना, आप सच कहती हैं। मुझे इस जख्म को नासूर बनने से रोकना ही होगा। थैंक यू रंजना।
ये तुम क्या कह रहे हो राजीव?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ऐसे रिश्ते किस काम के जिसे अंजाम तक पहुँचना मुमकिन ना हो।
मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ।
और इसी दुनिया में तुम्हारे पति भी शामिल है। मैं अब तक उनके साथ बहुत नाइंसाफी करता रहा हूँ, मगर अब नहीं कर सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है।
यह सब तुम्हें अब होश आ रहा है?
जब आँख खुल जाए तभी सवेरा माना जाता है।
मगर तुम तो नींद से कुछ ज्यादा ही सो लिए हो।
गलतियों के भोर में डूबा आदमी कुछ ज्यादा ही सो लेता है मेरी तरह, मगर जब नींद खुलती है तो पूरी तरह जागा हुआ होता है।
और मैं जो सारे शहर की निगाहों में गिरी, पति की निगाहों में गिरी, बदनाम हुई, उसका कुछ नहीं?
मैं मानता हूँ जितनी गलती मेरी रही है उतनी ही गलती तुम्हारी भी रही है। गलती हम दोनों की है, इसलिए हम एक दूसरे पर कोई दोष नहीं लगा सकते।
तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है?
हाँ बिल्कुल आखिरी फैसला। अब तो मैं डॉक्टर संदेश से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ अब भविष्य में अपने पैर कभी किसी गलत राह पर चलने नहीं देना।
ठीक है राजीव, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा।
सॉरी शिवांगी, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। बाय, चलता हूँ।
देखो शिवांगी, आजकल शादी से पहले के अफेयर्स को हमारा समाज भी अब बुरा नहीं मानता, लेकिन शादी के बाद पति के होते हुए किसी और पराये पुरुष से अफेयर की अनुमति हमारा समाज आज भी नहीं देता है।
शायद तुम ठीक कहती हो रंजना। राजीव मुझसे छोटा होकर भी इस बात को समझ गया और मैं उससे बड़ी होकर भी इस बात को नहीं समझ पाई। दिमाग की ना सुनकर दिल की बात मानी थी मैंने।
शिवांगी, हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। अगर हम हमारे समाज की नैतिकता का पालन नहीं करेंगे और उसके नियमों को नहीं मानेंगे तो एक ओर तो हम पाप के भागीदार बनते ही है अपनी नैतिकता खोकर, वही दूसरी ओर हम अपनी अनैतिकता से समाज में एक बुरा उदाहरण भी पेश करते हैं और दूसरों को भी अपनी नैतिकता खोने की प्रेरणा देते हैं।
हाँ रंजना, तुम्हारी बात सही है।
लौटता हुआ पंछी भी अपने घोंसले में ही लौटता है, क्या तुम भी वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौट सकती?
क्या संदेश मुझे माफ कर पाएगा?
वह तो तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें माफ करता रहा है, तभी तो वह अब तक तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लौट आने से तो उसे खुशी ही होगी।
सच है रंजना, संदेश मुझसे बहुत बड़े दिल वाला है, वह जरूर मुझे माफ कर देगा, जरूर माफ कर देगा। मैं आ रही हूँ संदेश, मैं तुम तक आ रही हूँ।
अपने घोंसले की ओर लौटता हुआ पंछी कितना प्यारा लगता है ना?
लौटता हुआ पंछी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटक के कलाकार थे दिव्या शूलिया, पूजा केलकर, पद्माकर मूले और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।